آپ ہیں ایس بی ایس ہندی کے ساتھ اور خبروں کے لیے جائیں sbs.com.au/hindi پر۔
पेश है आज के मुख्य समाचार वैशाली जैन के साथ। न्यू साउथ वेल्स सरकार ने किया अतिरिक्त बाढ़ राहतों का ऐलान। भारत के महाराष्ट्र में पटरी से उतरे ट्रेन के 10 डब्बे। और क्रिकेट में न्यूजीलैंड के रॉस टेलर खेलेंगे आज अपना आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मैच। और अब समाचार विस्तार से। न्यू साउथ वेल्स के उत्तरी भाग में बाढ़ पीड़ितों को घर दोबारा बनाने के लिए अतिरिक्त राजकीय सहायता की पेशकश की गई है। ये सहायता 8 खास इलाकों के केवल उन लोगों के लिए घोषित की गई है जिनकी संपत्ति का बीमा नहीं हुआ था। इन संपत्तियों को अगर राजकीय आपातकालीन सेवा ने क्षतिग्रस्त बताया हो या ध्वस्त या रहने के काबिल ना बताया हो तो ये अतिरिक्त सहायता उन्हें उपलब्ध होगी। हालांकि ये सहायता उन लोगों के लिए लागू नहीं होगी जिन्हें पहले ही आपदा सहायता मिल चुकी है। न्यू साउथ वेल्स पुलिस के डिप्यूटी कमिश्नर और उत्तरी न्यू साउथ वेल्स में फ्लड रिकवरी कोऑर्डिनेटर मैल लेनियन का कहना है कि बाढ़ की वजह से विस्थापित हुए लोगों को सर्विस NSW के साथ अपना पंजीकरण कराना चाहिए ताकि सरकार उनकी सहायता कर सके। राज्य ने 17 बाढ़ सहायता केंद्रों की स्थापना की है जहाँ निवासी सहायता पा सकते हैं और ये आवेदन भी कर सकते हैं। हालांकि खराब मौसम के चलते इनमें से कई केंद्र फिलहाल बंद हैं। इसी बीच बाढ़ग्रस्त लिज्मर निवासियों के का कहना है कि राज्य की घर दोबारा बनाने की नव घोषित ग्रांट में कुछ लोग पीछे ही रह जाएंगे। वे लोग जिनके घरों का बीमा हुआ था उनका कहना है कि उनके बीमे के आवेदनों को विशेषज्ञ के आंकलन की आवश्यकता होने के कारण उन्हें सहायता मिलने में देर होगी। निवासी बिनी ओडबॉयर लिज्मर में 1999 से अपने मौजूदा घर में लिज्मर में 1999 से और अपने मौजूदा घर में पिछले 14 साल से रह रही हैं। उन्होंने SBS न्यूज से कहा कि बीमे का आकलन खत्म होने के बाद शायद उनके परिवार के पास कुछ ना बचे।
It will take at least 6 months before there's any determination on that claim. A hydrologist has to do a report, which will take 4 months just to do the report. I don't know when the hydrologist will get here. And then the outcome of that report will determine whether my house was submerged due to storm damage or flood damage. If they determine it's flood damage, then I don't get anything.
न्यू साउथ वेल्स हेल्थ सर्विस यूनियन का कहना है कि स्वास्थ्य कर्मियों और राज्य सरकार के बीच बातचीत में कोई समझौता नहीं हो सका है। स्वास्थ्य कर्मी आने वाले गुरुवार 7 अप्रैल को 4 घंटे के लिए शहरी अस्पतालों में और 2 घंटे के लिए क्षेत्रीय अस्पतालों में काम बंद कर देंगे। न्यू साउथ वेल्स के अधिकतम वेतन नियम के अंतर्गत पब्लिक सेक्टर में वेतन में 2.5% से अधिक की बढ़त नहीं दी जा सकती है। पर यूनियन का कहना है कि महंगाई दर के 3.5% होते हुए 2.5% की वेतन बढ़ोतरी नाकाफी है। यूनियन के सचिव जेराड हेज ने स्काई न्यूज से कहा कि राज्य सरकार को खासकर 2 बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है।
We've got correspondence after correspondence to say, you know, in the future, we can't deal with awards that still talk about incinerator allowances. Also, we can't deal with, effectively 2 years ago, cleaners getting $149 for a year increase before tax. So the government's got to address those two issues very clearly.
बॉर्डर सुरक्षा बल द्वारा नज़रबंद किए गए व्यक्ति औसत तौर पर ऑस्ट्रेलिया के इमिग्रेशन डिटेंशन सिस्टम में 2 साल तक बिताते हैं। सेनेट लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अफेयर्स कमेटी को बताया गया है कि देश में डिटेंशन की अवधि औसत तौर पर 697 दिन की है। कमेटी को यह भी बताया गया कि 17.3% डिटेनी नाव से ऑस्ट्रेलिया पहुंचते हैं, 12% वीजा की अवधि से अधिक समय देश में रहने वाले लोग हैं और बाकियों का वीजा अलग अलग वजहों से रद्द किया जाता है। न्यू साउथ वेल्स में नाजी स्वास्तिक को सार्वजनिक तौर पर दिखाना जल्द ही अपराध घोषित हो सकता है। न्यू साउथ वेल्स के अटॉर्नी जनरल मार्क स्पीकमैन का कहना है कि सरकार ऐसे सार्वजनिक प्रदर्शन को अपराध बनाने के लिए जल्द एक बिल लेकर आएगी। फरवरी में एक संसदीय जांच ने एकमत हो इस बैन का समर्थन किया था। राज्य के विपक्ष का कहना है कि वे भी इस बैन का समर्थन करेंगे। लेबर पार्टी के सांसद वॉल्ट सेकर्ड का कहना है कि देश में और विदेश में भी अति दक्षिणपंथी गतिविधियों में बढ़ोतरी देखी गई है। और अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने उनकी सरकार गिराने की कोशिश को नाकाम कर दिया है और अब चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं। पाकिस्तानी संसद के डिप्टी स्पीकर, जो कि श्री खान के पार्टी के सदस्य भी हैं, ने विपक्ष के अविश्वास पत्र को खारिज कर दिया है। ऐसी आशंका जताई गई थी कि श्री खान ये मत हार जाते। डिप्टी स्पीकर ने इस मत को विदेशी षड्यंत्र और असंवैधानिक बताते हुए खारिज किया था। श्री खान का कहना है कि देश की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने उनके इस तर्क को मान लिया है कि ये प्रयास अमरीका की चाल थे।
Those minutes of the conversation between our ambassador and their official, that entire conversation was shared with our National Security Council. The minutes of that meeting were confirmed, and it was confirmed that this plan to oust me was from abroad, which was interference in Pakistan's internal politics. And the basis of this no confidence vote was from abroad.
Internal politics mein aur ye jo no confidence thi, iski buniyad bahar thi.
अमरीका ने श्री खान के आरोपों का खंडन किया है। दूसरी ओर श्रीलंका में प्रदर्शनकारियों ने कर्फ्यू तोड़ते हुए राष्ट्र की सरकार के खिलाफ राजधानी कोलंबो में विरोध प्रदर्शन जारी रखा है। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्सा ने बढ़ते तनाव के बीच पिछले हफ्ते आपातकाल घोषित कर दिया था। श्रीलंका इस समय महंगाई, आवश्यक सामग्री की कमी और बिजली की कमी से जूझ रहा है। सरकार के समीक्षकों का कहना है कि एक के बाद एक आती सरकारों के आर्थिक गैर प्रबंधन ने देश को इस स्थिति में ला खड़ा किया है। और अब खबरें भारत से। भारत में पिछले 24 घंटों में 913 नए कोरोना मामले सामने आए हैं। वहीं सक्रिय मामलों की बात करें तो ये संख्या 12,597 की है। भारत में पिछले 24 घंटों में 13 लोगों ने इस घातक वायरस के कारण अपनी जान गंवाई है और इसी के साथ इस अवधि में भारत में 284,073 टीकों की खुराकें भी वितरित की गई हैं। दूसरी ओर महाराष्ट्र में नासिक के नजदीक लहावट और देवलाली स्टेशन के बीच रविवार दोपहर लोकमान्य तिलक जयनगर एक्सप्रेस, जिसे पवन एक्सप्रेस ट्रेन भी कहा जाता है, के 10 डब्बे पटरी से उतर गए। इस हादसे में 2 लोग घायल हुए। घटना की सूचना मिलते ही चिकित्सा और राहत टीम को मौके पर रवाना किया गया। मध्य रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि हादसा अपराह्न करीब 3:10 पर भुसावल खंड में भारतीय समय से हुआ। इस संबंध में मध्य रेलवे के एक प्रवक्ता ने कहा कि दुर्घटना राहत ट्रेन यानी ATR को मनमाड से रवाना किया गया, जबकि चिकित्सा उपकरण राहत ट्रेन को भुसावल से भेजा गया। उन्होंने बताया कि इगतपुरी से भी चिकित्सा वैन को मौके पर भेजा गया था। अधिकारियों का कहना है कि घायल हुए एक व्यक्ति की हड्डी टूट गई है, जबकि दूसरे को मामूली चोटें आई हैं। इन दोनों को ही पास के अस्पताल में ले जाया गया था। और अब डॉलर का हाल। आज यानी सोमवार को ये खबर लिखे जाने तक एक ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की भारतीय रुपयों में कीमत 56.94 और एक अमरीकी डॉलर की तुलना में कीमत 75 सेंट रही। और अब खबरें खेल के मैदान से। आज खेले जा रहे नीदरलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे मैच न्यूजीलैंड के दिग्गज खिलाड़ी रॉस टेलर के लिए उनके करियर का आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मैच होगा। यही कारण है कि नेशनल एंथम के समय टेलर रोने लगे। सोशल मीडिया पर उनका यह वीडियो वायरल भी हो रहा है। टीम के नेशनल एंथम के समय न्यूजीलैंड के दिग्गज खिलाड़ी अपने बच्चों के साथ मौजूद रहे। दरअसल टेलर ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि वे नीदरलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट से खुद को अलग कर लेंगे। न्यूजीलैंड के इस दिग्गज खिलाड़ी ने अपने वनडे करियर में 236 मैच खेले हैं और इस दौरान 8,588 रन बनाने में सफल रहे हैं। वनडे में टेलर के नाम 21 शतक और 51 अर्धशतक शामिल हैं। साल 2006 में उन्होंने अपने वनडे करियर में वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच खेलकर शुरुआत की थी। टेलर वनडे में न्यूजीलैंड के लिए सबसे ज्यादा शतक और अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज भी हैं। और अंत में एक नजर कल यानी मंगलवार को प्रमुख शहरों के मौसम के हाल पर। पर्थ में कल अधिकांश रूप से धूप खिली रहेगी। यहां अधिकतम तापमान 27 जबकि न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। एडिलेड में बादलों की आवाजाही लगी रहेगी। यहां अधिकतम तापमान 24 डिग्री जबकि न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। मेलबर्न में भी बादल छाए रहेंगे। यहां अधिकतम तापमान 21 जबकि न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। देश की राजधानी कैनबरा में भी धूप छांव का मौसम बना रहेगा। यहां अधिकतम तापमान 23 जबकि न्यूनतम 7 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। सिडनी में तेज धूप खिली रहेगी। यहां अधिकतम तापमान 25 जबकि न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। ब्रिस्बेन में भी धूप ही धूप रहेगी। यहां अधिकतम तापमान 29 जबकि न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। डार्विन में कल बारिश के साथ तूफान की आशंका जताई जा रही है। अधिकतम तापमान 33 जबकि न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। भारत की राजधानी में कल धूप छांव का मौसम बना रहेगा। दिल्ली का अधिकतम तापमान 39 डिग्री जबकि न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। समाचार में आज इतना ही। नमस्कार।
ऐसी ही और कहानियां सुनना चाहते हैं? Apple Podcast, Google Podcast, Spotify या फिर जहां आप podcast सुनते हैं वहां हम हैं।